आपका झूठ पकड़ा गया पर आपको डरने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं भैया को कुछ नहीं बताऊंगी। वैसे भी भैया हैं ही इतने हैंडसम और जब एक्सरसाइज करते हैं तब तो और भी हॉट लगते हैं कि किसी की भी नजरें उस पर ठहर जाएं। और आपके तो पति हैं, अगर उन्हें देखती भी हैं तो क्या गलत है? उसकी बात सुनकर आरवी जबरदस्ती थोड़ा सा मुस्कुरा दी। छाया मुस्कुराते हुए बड़ी माँ का कमरा साफ करने चली गई। आरवी का मन तो था कि रश्मि से बात करके उसे कल के बारे में सब बता दे, पर फोन नहीं था उसके पास तो वो खाना बनाने लगी। शान कमरे में गया तो आरवी वहां नहीं थी, अंशु अकेली ही सो रही थी। आज शान की छुट्टी थी। उसने अपना फोन लिया और किसी से बात करने के बाद अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। सुभाष जी बाहर गार्डन में सुयश जी के साथ बैठे बातें कर रहे थे। आरवी दोनों को चाय दे आई, फिर अर्पिता जी के साथ पूजा की, उसके बाद अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। शान नहाकर तैयार हो गया था, ऑफिस जाना नहीं था तो वी नेक ब्लू टी शर्ट और वाइट ट्राउजर पहना हुआ था उसने। जब आरवी ऊपर आई तो शान अंशु को जगा रहा था। आरवी उसके पास आकर बोली, रहने दीजिए, मैं उन्हें उठाकर रेडी कर देती हूँ। आवाज सुनकर शान ने उसे देखा, फिर अंशु को गोद में उठाते हुए बोला, आज मेरे पास वक्त है तो अंशु को मैं नहलाकर रेडी कर दूंगा। आरवी ने तुरंत ही उसको रोकते हुए कहा, वो लड़की है, आप उसे कैसे नहला सकते हैं? शान उसे घूरने लगा, बेटी है वो मेरी और अभी छोटी है तो मेरे नहलाने में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे आने से पहले ये मैं ही करता था। अंशु छाया से तैयार नहीं होती थी तो मुझे ही उसे संभालना होता था। तो तब मैं नहीं थी ना, अब तो हूँ। 5 साल की हो गई है वो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप रहने दीजिए, मैं रेडी कर दूंगी, उसके बाद ले जाइए आप उन्हें अपने साथ, मैं नहीं रोकूंगी। आरवी ने फिर से उसको मना किया तो अब शान से उससे बहस नहीं की। आरवी ने आगे आकर अंशु को अपनी गोद में ले लिया, फिर बाथरूम की तरफ जाते हुए बोली, अगर फ्री हैं तो कुछ देर नीचे जाकर डैड के साथ बैठ जाइए, उन्हें अच्छा लगेगा, मैं अंशु को रेडी करके वहीं ले आऊंगी। इतना कहकर वो उसे लेकर बाथरूम में चली गई। शान भी कमरे से बाहर निकल गया। सही बात तो थी, जब से आरवी घर में आई थी वो एक दिन भी घर पर नहीं रुका था, काम में लगा रहता था, मुश्किल से रात में कुछ देर उनसे बात करता था। यही सब सोचते हुए वो नीचे उन दोनों के पास पहुंचा, दोनों को गुड मॉर्निंग विश करके उनके पास ही बैठ गया। उन दोनों ने भी रिप्लाई किया, फिर सुभाष जी ने उसे घर के कपड़ों में देखकर सवाल किया, क्या बात है बेटा, आज ऑफिस नहीं जाना आपको? घर के कपड़ों में है अभी तक और ऑफिस के लिए तैयार होने की जगह हमारे साथ बैठे हैं? ये सवाल चल तो सुयश जी के दिमाग में भी रहा था तो वो भी शान को देखने लगे। शान ने दोनों को देखा, फिर अपने पैर पर पैर चढ़ाकर पसर कर बैठते हुए कहा, नहीं आज छुट्टी है, बहुत वक्त हो गया था सबके साथ बैठे हुए, कुछ वक्त गुजारे हुए, अंशु भी शिकायत कर रही थी इसलिए आज छुट्टी ले ली। सुयश जी ने मुस्कुरा कर कहा, चलिए अच्छा है, कम से कम इस घर में कोई तो है जिनकी शिकायतें आप सुनते हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। शान बिल्कुल जरा सा मुस्कुरा दिया। उसके बाद तीनों की बातें शुरू हो गईं। सुयश जी अपने काम और पार्टी के आने वाले इलेक्शन के बारे में सुभाष जी को बता रहे थे और शान उन दोनों की बातें सुन रहा था। कुछ देर बाद अंशिका का हाथ थामे आरवी भी वहां पहुंच गई। अंशु झट से जाकर शान से लिपट गई। दोनों ने एक दूसरे को किस करके गुड मॉर्निंग विश किया। उन्हें देखकर सुयश जी और सुभाष जी ने एक दूसरे को देखा, फिर उन्हें देखकर बच्चों की तरह शिकायत करते हुए बोले, सारा प्यार अपने डैडी के लिए है, दादू को देखा भी नहीं आपने, दैट्स नॉट फेयर। उनकी बात सुनकर शान और अंशु दोनों ने सर घुमाकर उन्हें देखा। शान ने इशारा किया तो अंशु ने जाकर दोनों के गाल को चूमकर उन्हें गुड मॉर्निंग कहा, फिर शान की गोद में चढ़ते हुए बोली, डैडी आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे ना, अंशु को आपके साथ प्ले करना है? शान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं आज डैडी कहीं नहीं जाएंगे, आज सारा दिन डैडी और अंशु प्ले करेंगे, मस्ती करेंगे और स्टडी भी करेंगे। उसकी बात सुनकर अंशु भी खुश हो गई। आरवी मुस्कुराकर अंदर चली गई। कुछ देर बाद सबने साथ में नाश्ता किया। उसके बाद शान फोन लेकर काम का बोलकर रूम की तरफ बढ़ गया। बाकी सब हॉल में इकट्ठे थे। आरवी सुभाष जी के पैरों की मालिश कर रही थी। अभी कुछ देर ही हुई थी कि घर के गेट पर किसी ने दस्तक दी। शान ने जाकर देखा तो एक लड़की थी, वो उसे लेकर अंदर आ गया। लड़की ने सबको ग्रीट किया, फिर असमंजस में आरवी को देखने लगी। आरवी भी उसे देखने लगी। लड़की ने शर्ट पैंट पहना हुआ था, वेल ड्रेस्ड थी, ऐसा लग रहा है किसी ऑफिस से आई हो। उसकी आंखों का सवाल समझते हुए अर्पिता जी ने आरवी को देखकर मुस्कुरा कर कहा, आरवी बेटा ये शान के ऑफिस में काम करती है, सृष्टि नाम है इनका, बहुत प्यारी बच्ची है, काम से अक्सर घर आती है। फिर उन्होंने सृष्टि को देखकर आरवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा ये आरवी है, शान की पत्नी और इस घर की बहू, आरवी शांतनु मल्होत्रा। उनकी बात सुनकर सृष्टि की आंखें हैरानी से फैल गईं, मुंह खुला का खुला रह गया और वो हैरानी से बोली, क्या शान सर ने शादी कर ली? कब? हमें तो बताया भी नहीं। शान सर तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, अकेले अकेले शादी के सारे लड्डू हजम कर गए और हमें खबर भी नहीं होने दी। जहां वो आंखें फाड़े सबको देख रही थी, वहीं उसकी बात सुनकर हैरानी से आरवी की आंखों के साथ मुंह भी खुला रह गया। जैसे ही सृष्टि ने अपनी बात खत्म की, उनके कानों में शान की सख्त गुस्से भरी आवाज पड़ी, क्या चल रहा है यहाँ? आवाज सुनकर सृष्टि की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने घबराकर सबको देखा, फिर झट से उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, कुछ नहीं सर, वो मैं कह रही थी कि आपकी चॉइस काफी अच्छी है, मैडम सच में बहुत सुंदर है। अब उसके लबों पर प्यारी सी स्माइल थी और वो मुस्कुराकर आरवी को देख रही थी। शान सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसके पास आते हुए बोला, तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे फालतू की बकवास पसंद नहीं, ना ही उसमें मुझे कोई दिलचस्पी है। मुझे बस इतना बताओ, जिस काम के लिए बुलाया था वो हुआ या नहीं? सृष्टि ने झट से अपने हाथ में पकड़ा शॉपर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल हो गया सर, लीजिए आपकी अमानत में यही देने तो आई थी। शान ने शॉपर ले लिया, तभी सृष्टि फिर से बोल पड़ी, वैसे सर आपने ये मैम के लिए मंगवाया है क्या? अगर ऐसा है तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं और अच्छे से चूज करके बेस्ट चीज लेकर आती। शान ने उसकी बात सुनकर उसको घूरते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं कहा था कि सबसे बेस्ट ही पसंद करके लेकर आना? कहा था सर, पर मुझे लगा आपने बड़ी माँ के लिए मंगवाया है तो मैंने उनके हिसाब से पसंद किया। अगर मुझे पता होता कि मैम के लिए है तो उस हिसाब से चूज करती। लड़कियों के लिए थोड़ा ध्यान से लेना पड़ता है ना, सृष्टि एक बार फिर निडर सी बोले जा रही थी। शान ने उसको खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, तुम मुझे हर बार ये एहसास दिलाती हो कि मैंने तुम्हें अपनी कंपनी में लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसकी बात सुनकर सृष्टि की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने हैरानी से सवाल किया, क्यों सर, अब मैंने क्या गड़बड़ कर दी? तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी कमी ही ये है कि तुम्हारा मुंह दो मिनट के लिए भी बंद नहीं रहता है, और मुझे ज्यादा बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। जितनी एनर्जी तुम इन बकवास को करने में बर्बाद करती हो, उसका आधा भी अगर अपने काम में लगाओ तो उसका फायदा तुम्हें और कंपनी दोनों को होगा। शान की रौबदार आवाज एक बार फिर उसके कानों में पड़ी। इस बार सृष्टि ने अपना सर झुका लिया और धीमी आवाज में बोली, सॉरी सर।
तुम्हारा काम हो गया, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और एक बात, आज यहाँ जो भी देखा या सुना, अगर वो बात ऑफिस में ना फैले तभी तुम्हारी नौकरी बच सकती है। अगर तुमने अपना मुंह वहां जाकर खोला तो अपने लिए दूसरी जॉब ढूंढ लेना। शान ने उसको सीधे सीधे धमकी दे डाली। बेचारी सृष्टि मुंह लटकाए जाने लगी। तभी अर्पिता जी ने उसको रोकते हुए कहा, सृष्टि बेटा, आई है तो कुछ देर रुक जाइए। नहीं बड़ी माँ, मुझे काम है तो जाना होगा, कभी और आऊंगी तब मैम से भी बातें करूंगी। सृष्टि ने उनके तरफ घूमकर मुस्कुराकर कहा और आरबी को देखकर मुस्कुराकर जाने के लिए मुड़ गई। अब अर्पिता जी ने शान को घूरते हुए कहा, ये क्या तरीका है बेटा, ऐसे कोई किसी से बात करता है? आपके वजह से कैसे उदास होकर चली गई वो? आप उसे जानती हैं बड़ी माँ, उदास और वो हो ही नहीं सकता। देखा नहीं था कैसे मुस्कुराकर बोल रही थी कि फिर आएगी? अगर उसके साथ सख्ती ना दिखाओ तो सारा वक्त बस बकबकी करती रहेगी, तो मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट कौन संभालेगा? फिर भी आपको उनके साथ इतना सख्त व्यवहार नहीं करना चाहिए, भूलिए मत वो आपकी एम्प्लॉई के साथ साथ बहन भी है। अर्पिता जी ने फिर से उसको डांट लगाई। वही उनकी बात सुनकर आरवी हैरानी से बोल उठी, बहन?